الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. اس سے پہلے جو امور زیر بیان رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کئی قسمیں بتائیں اور پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ایک جرم کی سزا بتائی اور جرم کی سزا سخت اور اس سے یہ تصور اللہ نے دیا کہ انسان کا ظاہر و باطن کو لوگ باطن کی طرف توجہ نہیں کرتے اور باطن کو اہمیت نہیں دیتے اس کو نجی معاملہ سمجھتے ہیں اور یہ دنیا کی ساری قوموں میں یہ بات رہی ہے اور اس وقت دنیا میں جو تمدن ہے وہ بھی اسی کا قائل ہے کہ باطن انسان کا نجی معاملہ ہے اس میں کسی کو اپنا حکم نہیں چلانا چاہیے اور ہم اس میں کسی کے تابع نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا تو تابع ہونے کا کیا سوال ہے؟ تابع کسی کا نہیں ہے. وہ انسان کو اصل سمجھتا ہے اور انسان کے ظاہر کو اصل سمجھتا ہے کہ انسان ظاہری طور پر جو اس کو عزت اور جب اور قوت اور برتری حاصل ہے وہ اصل ہے اور وہی سب کچھ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو نظام دنیا کا بنایا ہے اس میں انسان کے ظاہر کو بہت سی صلاحیتیں عطا فرما دی ہیں اور وہ ان کی حیثیت ذریعے کی ہے وہ وسیلے کی ہے. اسلام کے نقطہ نظر سے ان کی حیثیت ظاہر کی جو طاقتیں ہیں انسان کی ان کی حیثیت ایک طرح سے ذریعے و وسیلے کی ہے, حقیقی نہیں ہے. حقیقی وہ چیز ہے جو اس کے اندر ہے. تو یہ ظاہر میں کتنا ہی اچھا عمل ہو اگر وہ باطن میں اچھا نہیں ہے تو وہ اچھا نہیں مانا جائے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں. کتنی دیکھنے میں اچھی نماز پڑھ رہا ہو آدمی اگر نماز والا تصور اس کو نہیں ہے اور نماز والی نیت اور وہ جذبہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی وہ نماز مانی نہیں جائے گی اور اس کے لیے حدیث میں سخت الفاظ آتے ہیں منہ مار دیا جائے گا, منہ مار دیا جائے گا یعنی بالکل رد کر دیا جائے گا کہ تم نے تمہارا تو اندر سے کچھ اور خیال تھا, دکھاوا تم یوں ظاہر میں اتنا ہی اچھا کام کر رہے ہو. تو ظاہر اور باطن دونوں کا ایک دوسرے سے جوڑ بٹھانا یہ اس کا حکم ہے کہ ہم ظاہر و باطن کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیں اور ان کو الگ الگ نہ کریں اور اصل فیصلہ باطن پر ہوگا ظاہر میں نہیں ہوگا. ظاہر کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے کہ آپ کوئی نیکی کام کریں گے تو اپنے ظاہر سے کریں گے, کسی کو کسی کی مدد کر رہے ہیں تو اپنے ہاتھ سے اس کو دے رہے ہیں, اپنی جیب سے نکال کے دے رہے ہیں, या किसी के जरिए से भेज रहे हैं, हाथ इस्तेमाल हो रहा है, जबान इस्तेमाल हो रही है, जो आप अल्फाज कह रहे हैं, तो बातिन का सारा काम जाहिर के जरिए से होता है। जाहिर जरिया है, वो असल नहीं है। लेकिन नई तहजीब जो है, ये नया तमद्दुन, बल्कि हमेशा जो जाहिलियत जिसको कहते हैं, जो गोया के अल्लाह ताला के हुक्मों के खिलाफ जो जिंदगी होती है, वो जाहिलियत कहलाती है। जाहिलियत हर जमाने में रही है, इस जमाने की जाहिलियत, ये तमद्दुन जो है, कितनी तरक्की कर जाए और इल्मी लिहाज से कितना फायदा समझा जाए, लेकिन ये उस इस्तेलाह के मुताबिक जाहिलियत है। अल्लाह ताला के हुक्मों के खिलाफ जो चीज़ होगी वो जाहिलियत कहलाएगी। तो इसका भी यही है कि जाहिर के सारा सारा निज़ाम जाहिर का चल रहा है, और जाहिरी की अहमियत है, और बातिन ये है कि बातिन साहिशनस्त, बातिन में जो चीज़ जिसका जिसका हुक्म चल रहा है और जिसका हुआ कि इख्तदार है, वो तो क्या है? नफ्स, आदमी का ख्वाहिश नफ्स, या उसके दिल की पसंदीदगी, जो ख्वाहिश होती है, जिसको ख्वाहिश नफ्स जो है उसको लोगों ने मामूल बना रखा है, यानी उसी के तहत सारा काम करते हैं, और बल्कि दावेदार हैं कि वही असल है। यानी इंसान कहते हैं, इंसान, हर इंसान आज़ाद है, उस पर किसी दूसरे का जोर नहीं पड़ना चाहिए, कोई दूसरा उसको मजबूर नहीं करेगा किसी काम पर, जो वो चाहे वो करेगा। अलबत्ता इज्तिमाई ज़िंदगी में यह है कि आप अपनी ख्वाहिश पर ज़रूर अमल कीजिए, लेकिन दूसरे को नुकसान पहुँचाए बगैर, दूसरे के जाहिर को नुकसान पहुँचाए बगैर, आप अपने कमरे के अंदर, अपने घर के अंदर जो चाहिए कीजिए, ममनू नहीं है बिल्कुल, और आप किसी के घर में घुसने और देखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसके उसके बातिन को आप देखने का आपको हक़ नहीं है। और इस इस्लाम में भी है, बातिन को देखने का आपको नहीं है, बातिन का ताल्लुक़ अल्लाह ताला से है, बातिन का ताल्लुक़ अल्लाह ताला से है। जाहिर का ताल्लुक जो है वो इंसानों ने अपने साथ महसूस कर रखा है, हालांकि वो भी अल्लाह ताला ही के ताबे है। तो बताया गया, उसमें बताया कि पहले तो एक बड़े जुर्म की सज़ा बताई गई, और सज़ा की बड़ाई से वो जुर्म की बड़ाई मालूम होती है। जाहिर है कि सज़ा जितनी ज़्यादा सख्त होगी, वो जुर्म उतना ही सख्त होगा, कभी तो सज़ा सख्त होगी। तो उस तरीके से ये बता दिया गया कि इंसान की जो आबरू है, इंसान की जो अखलाकी जो हैसियत है, उसकी हैसियत जाहिर की हैसियत से कम नहीं है, ज़्यादा है। जाहिर में तो ये है कि आपने किसी को मारा है तो आपको हक है कि आपको मारा जाए, उसकी सज़ा दी जाए आपके जिस्म को, लेकिन अंदर जो आदमी का ज़मीर है और आदमी की जो आबरू है, ख़ासतौर अखलाकी, उसको अल्लाह ताला के यहाँ से उसको वही जाहिर वाली अहमियत दी गई है। इसलिए सज़ा क्या है? कसर तक की सज़ा है, गोया है कि उसको संसार करना, और कम से कम ये है कि कोड़े लगाए जाएंगे। तो इसी तरह जिस तरह आदमी की जिम्मेदारी है कि बुराई से बचे, इस तरह ये जिम्मेदारी भी है कि दूसरे पर बुराई का इल्ज़ाम न लगाए, सिवाय इसके कि बुराई इतनी खुली और वाज़ेह तरीके से हो कि उसकी सज़ा लाजमी है, तो उस वक्त तो फिर कबूल होगी, वरना आप अपनी फिक्र कीजिए, आपको दूसरे की फिक्र की जरूरत क्या है। इसलिए अगर इल्ज़ाम ऐसा लगाता आदमी साबित ना हो सके, तो उस इल्ज़ाम की सज़ा भी तकरीबन उसी से मिलती जुलती है, इसलिए कि वो उसने दूसरे को ऐसा कत्ल कर दिया। आदमी ने कोई फौज आदमी ने जना किया तो उसने गोया अपने अंदर के इंसान को कत्ल कर दिया, अपने अंदर का जो इंसान है उसका बातिन गोया के उसको उसने कत्ल कर दिया, वो ख़त्म हो गया। वो तो जाहिर के फिर क्या हैसियत रहेगी? जब बातिन ख़त्म हो गया तो जाहिर फिर क्या? जाहिर तो जरिया है, जाहिर तो जरिया है, उसके जरिए से होता है। इसलिए सज़ा ऐसी रखी कि जाहिर को भी ख़त्म कर लो, या जाहिर को कम से कम इतना कुचल दो कि किसी को हिम्मत न हो। उसके बाद अल्लाह ताला ने जो तवज्जो दिलाई कि ये पूरा निज़ाम चल रहा है कायनात का, ये इतना वाज़ह है, इतना मुनज़्ज़म है कि ज़रा भी आदमी समझदार होगा तो जो 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 चीज़ मुशाहदा जो कर रहा है, देख रहा है, उससे खुद फैसला कर लेगा कि एक बाला ताकत है जो इसको चला रही है। इसलिए इंसान अपनी जिंदगी में यही करता है, कोई कारखाना चल रहा है तो कोई आदमी समझे खुद ब खुद चल रहा है, कहेगा इसका कोई डायरेक्टर जरूर होगा, इसका इंजीनियर जरूर होगा, इसको चलाने वाला जरूर होगा, चाहे वो कहीं दूर बैठा हो अपने दफ्तर में से बैठा हो, लेकिन चला रहा है वो, उसी तरह मंसूब किया जाएगा। कोई कारोबार हो, कोई मामला हो, कोई मुहिम हो, उसको आदमी नहीं कहे खुद ब खुद मुहिम चल रही है, नहीं कैसे चलेगी, कोई चला रहा है चलेगी। तो सूरज का निकलना और डूबना और चांद का निकलना और डूबना और ये बादलों का आगे बरसना और जरूरत के मुताबिक बरसना, यानी कैसा निज़ाम, पक्का निज़ाम है बारिश का भी निज़ाम। देखिए तारीखें तक तय होती हैं कि इन तारीखों में बारिशें होंगी, और कमी बेशी अल्लाह ताला करता है, कमी बेशी जो है वो इत्तेफाकी नहीं होती। साफ अल्लाह ने कहा कि तुमको जो तकलीफ पहुंचती है वो तुम्हारी कीविया का नतीजा होती है। अगर बारिश कम हुई है तो क्यों कम हुई है, इत्तेफाकन कम नहीं हुई है, बल्कि अल्लाह ताला के साथ कम की गई है किसी वजह से। और वजह क्या है, वजह उस वही की वजह है कि वहाँ ऐसा काम होता है या ऐसा अमल होता है जो अल्लाह ताला के नज़र में बारिश से महरूम कर देने का होता है, कहत होता है, चीज़ों की कमी आजादी होती है। ये सब यूं ही नहीं होता, बल्कि ये अल्लाह ताला के अल्लाह की तरफ से होता है, किसी मसलियत से होता है, उसमें हिकमत होती है, बाद वक्त सजा होती है, बाद वक्त तंबीह होती है, बाद वक्त कोई किसी कोई कोई ऐसी मसलियत होती है जिसमें इंसान का फायदा होता है, इंसान की समझता। लेकिन सजा आमतौर बहुत सजा बहुत होती कसरत से आदमी के, जैसे गुनाह होते हैं और जैसे उनकी अल्लाह ताला की नाफरमानी होती, उसी हिसाब से ये जो निज़ाम है, फिजाई निज़ाम और ये ज़मीनी निज़ाम, इसका असर पड़ता है, इसमें कमी बेशी होती है। तो अल्लाह ताला ने मतवे किया, तुम देखो दरख्तों को देखो और ये काम फलों को देखो, गजाओं को देखो, इन सब से तुम समझ सकते हो कि कोई कर रहा है, करने वाला कोई है, यू ही खुद ब खुद नहीं हो रहा है। और इस तरह ये देखो कि अल्लाह ताला ने तुमको दरियाओं पर और समंदर में किश्ती के जरिए से, जहाज़ों के जरिए चलने का इंतजाम करवाया, यानी जहाज क्या, जहाज यूँ ही थोड़ी पानी के ऊपर चलता है, अल्लाह ताला ने लकड़ी में या चीज में जो वजन है उसके लिहाज से पानी का, तो उसका वजन कम है, पानी को वो ठहरती है वो लकड़ी। इस तरह खला जो है वो पानी के मुकाबले में हल्का होता है। तो किश्तियों के निज़ाम है, और हमारा जो अखलोक माला तालमून और अल्लाह ताला और चीज़ें ही पैदा करेगा, तो उससे मुराद उसमें ये जहाज और रेलवे और ये मोटरें सब आ जाती हैं, क्योंकि उस वक्त इनका नाम लेना अल्लाह से कोई समझता नहीं, जो बात भी कही गई लोगों की समझ के मुताबिक कही गई। तो आप देखें तो इंसानों की मुख्तलिफ अकसाम बताई गई, एक तो वो इंसान है जो इन बातों को मानकर और उस पर उसके मुताबिक अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, और वो इंसान है जो बिल्कुल नहीं मानते और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और समझाने वालों को मारने के लिए तैयार होते हैं, और दूसरे वो हैं कि जो जिन्होंने अपने को इफ़ा कर रखा है, ये हालात देखे उन्होंने, जैसे हालात हैं उसके मुताबिक अपने को ढाल लेते हैं, फिर उनका कोई अपना कोई असर अमल नहीं होता। तो ये सब चीज़ें बयान करने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा अले मा हुम्मिला व अलैकुम मा हुम्मिलतुम, के इनसे कहिए तुम अल्लाह और के रसूल की बात को मानो, इताअत करो, अगर तुम इससे पलटते हो और ऐसा नहीं करते तो जानते हो अल्लाह ताला के नज़दीक ये है कि नबी पर की जो जिम्मेदारी डाली गई, नबी पर जो जिम्मेदारी डाली थी गई थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, वो फारिग हो गए, उन पर ये जिम्मेदारी नहीं है कि आप सबको हिदायत दे दें, وہ ہدایت کے لیے ان کو سمجھا دیں, یہ ان کی ذمہ داری انہوں نے پوری کر لی. اور تم پر جو ذمہ داری تھی وہ تم پر عائد ہوتی ہے کہ تم نے اللہ کی باتوں کو جو کھول کھول کے بیان کی گئی تھیں, سمجھا دی گئی تھیں, اس کے بعد تم نے نہیں مانا. کسی بات یا تصویر ہو تحت لو, تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو گے تو صرف تو صحیح راستے پہ چلو گے. عمر رسول مبین, اور اللہ کے رسول پر ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کھلے طریقے سے بیان کرے, کھلے طریقے سے پیغام کو پہنچا دے, تو اللہ کے رسول نے اپنا کام کر دیا اور تم پر حجت قائم ہو گئی. فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم, اور جن لوگوں نے بات مانی اور عمل کیا اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے رسول, ان سے اللہ نے بڑا اچھا وعدہ کیا ہے. وعدہ کیا کیا ہے؟ وعدہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے, تم میں سے جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اعمال صالحہ اختیار کیے, اچھے کام کیے, تو اللہ تعالیٰ ان کو زمین پر اپنا نائب بنائے گا, یعنی ان کو زمین پر اقتدار عطا فرمائے گا. محکم استخلف الذین من قبلہم, جس طرح اس سے پہلے مختلف موقع پر ایسا ہوا ہے کہ اللہ نے نیک لوگوں کو جب انہوں نے وہ طریقہ اختیار کر لیا جو اللہ نے ان کو بتایا تھا, جس کا حکم دیا تھا, تو اللہ تعالیٰ ان کو اختیار دیا. حسلمان علیہ السلام کی مثال ہے, داؤد علیہ السلام کی مثال ہے, اور کیسے ایسے ایسے لوگ ہوئے ہیں جو نبی تھے یا نبی نہیں تھے لیکن اللہ والے تھے, تو اللہ نے ان کو اختیار دیا اور وہ حاوی ہوئے. تو جیسے ان لوگوں سے پہلے ہوا ہے, وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اور ان کو اللہ تعالیٰ جو دین اللہ نے ان کو دیا ہے, شریعت دی ہے, اس کو رعایت کرنے اور اس کو عمل میں لانے کا موقع بھی دیا, ان کو اس بات کا موقع دیا کہ وہ اپنے اللہ کے دیے ہوئے دین کو, جس سے اللہ راضی ہے کہ اس دین کو پھیلایا جائے, تو اللہ نے ان کو دیا. اور دلن نہ ہوں امباد خوف آمنا, اور وہ جب دعوت کا کام کر رہے تھے تو بہت پریشانی میں خوف کی حالت میں تھے, کس وقت کوئی ککڑ ڈالے, مار ڈالے ان کو یا کر کرے, اس خوف کو اللہ نے پھر بدل دیا امن سے, کہ پورا امن قائم ہو گیا. اور اشارہ وہی اسلامی نظام کا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے جدید عرب پر آپ کا اختیار حاصل ہو گیا, اس کے بعد سے پورے جدید عرب کا نظام بہت امن اور راحت کا ہو گیا. حالانکہ یہ جدید عرب وہ تھا کہ جہاں قبیلے لڑتے تھے, ذات لڑتے تھے, اور کوئی کسی جگہ جا نہیں سکتا, سفر کرنا آسان نہیں تھا, اس لیے کہ ان کے ہاں ان کے دستور میں, جو عربوں کا دستور تھا یہ کہ ہم طاقت کے زور سے جو لے لیں گے وہ ہمارا ہے, ہم اس کے مالک ہیں. ایسا یہ ہے کہ طاقت, تو جہاں انہوں نے دیکھا کسی شخص کو, ایک اکیلا آدمی جا رہا ہے تو اس کو مار کے اسے لڑ کر اسے چھین لیں گے, سوائے اس کے کہ پہلے سے اس سے کوئی وعدہ ہو یا عہد ہو. عہد و پیمان کا بھی خیال کرتے تھے, اس لیے کہ اس کے بغیر پھر زندگی چل ہی نہیں سکتی تھی. اس لیے کہ کوئی کسی دوسرے علاقے میں جانا چاہتا تھا تو اس علاقے کے لوگوں سے اجازت لیتا تھا, وہ جب اجازت دیتے تھے کہ ہاں تم آ سکتے ہو, فلاں آدمی تمہارا ضامن ہے, اس وقت وہ حفاظت رہتا تھا اور اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی. اسلام آیا تو ایسا امن قائم ہوا کہ آدمی بے تکلف جہاں چاہے چلا جائے, کوئی اس کو پریشان کرنے والا نہیں, کوئی اس کو تکلیف پہنچانے والا نہیں. میں تمہارے یہ خوف کو اللہ تعالیٰ امن سے بدل دے گا, اور لوگوں کا بھی حال یہ ہوگا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں گے. فرمایا یا بدون نہیں میری عبادت کریں گے, اور اللہ شریکون بھی سیا, اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے, کوئی شرک کا کام نہیں کریں گے. لیکن فرمایا امن کفر عباد ذلک, اگر اس کے بعد پھر ایسے لوگ آئے کہ جنہوں نے انکار کیا یا کفر کیا, اللہ کے حکموں کے خلاف کیا, تو وہ لوگ वो लोग जो हैं वो फासिक लोग होंगे, यानी वो गुनहगार और खताकार लोग होंगे, उनके साथ अल्लाह ताला का मामला फिर वही होगा जो खताकार और गुनहगार लोगों के साथ होता है। यानी कोई अगर आदमी सही रास्ते पर आया, उसने अच्छे काम किए, इसका ये मतलब नहीं है कि अब उसको गारंटी हो गई। अगर वो अपने अच्छे कामों को कायम रहेगा तो अल्लाह ताला की मदद भी कायम रहेगी, अल्लाह ताला की से उसको जो नेमत दी गई है वो भी कायम रहेगी। लेकिन अगर उसने खिलाफ वर्जी की, उसके औलाद ने खिलाफ वर्जी की, उसके खानदान ने, तो फिर अल्लाह ताला उसी के मुताबिक मामला फरमाएगा जो नाफरमानों के सिलसिले में होता है। चुनाचे बनी इसराइल के साथ यही हुआ कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के औलाद को अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया था और बहुत नबी पैदा हुए, बहुत उनको अल्लाह ने बड़ा ऊँचा मकाम दिया और ये फरमाया कि बनी इसराइल को हमने इंतखाब कर लिया, हमने जानबूझ कर इंतखाब किया, ये अच्छे लोग। लेकिन उसके बाद फिर ऐसे लोग पैदा होना शुरू हुए कुछ अरसे के बाद कि जो तहरीफ करने लगे दीन के अंदर और खुलकर बहुत नाफरमानी और नाजायज काम करते थे खुलकर और जुरत के साथ, और हत्ता के फिर उन्होंने इस हद तक बढ़ गए थे कि अपने समझाने वालों को से लड़ते थे और उनको नुकसान पहुंचाते थे, हत्ता कि कई नबियों को उन्होंने कत्ल कर डाला। खुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी उन्होंने गोया कि अपने हृदय कत्ल कर दिया, फांसी पर चढ़ा दिया, वो गालियाँ देते थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। अब भी जो ईसाई हैं वो हज़रत ईसा वो यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बुरे अल्फाज से खत्म करते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि उनको उनसे जो इज्जत उनको अल्लाह ने दी थी वो ख़त्म कर दी, कहा अब ये कयामत तक जलील रहेंगे और इनको सब लोग जलील समझेंगे। वाकई है भी ऐसा, इस वक्त ताकत के दौर से उनको उनकी हुकूमत कायम कर दी गई है, उन्हें खुद उनमें इतनी कुव्वत नहीं है, अगर उनको वो बड़ी ताकत सहारा देना बंद कर दे तो रह ही नहीं सकते, और बुरा समझते हैं ईसाई भी उनको बुरा समझते हैं। तो इसलिए कि उन्होंने फिर अल्लाह की नाफरमानी बहुत सख्त तरीके से करना शुरू कर दी थी तो अल्लाह ताला ने वो नेमत उनसे हटा ली। तो ये फरमाया कि उमन कफर बाज डालेगा और इसके बाद कोई कुफर इख्तियार करेगा तो वो गुनहगार और खताकार करार पाएगा, जाहिर है उनके साथ मामला अल्लाह का बदल जाएगा। वो अकीम सलात व आतुज़ ज़का और फरमाया कि नमाज कायम करो और ज़कात दो और वफ़ी रसूल लअल्लकुम तुरहमून और रसूल की इताअत करो, इसमें बहुत तवक्को है कि तुम पर अल्लाह ताला की बहुत रहमतें नाज़िल हों। नमाज और ज़कात इन दो का जिक्र बहुत आता है, फरमाया जगह जगह ताकीद आती है, इसलिए कि नमाज तो अल्लाह ताला से बड़ा रब्त का जरिया है। जैसे कि हमने कि नमाज गया कि मोमिन की मेराज है, यानी मेराज में क्या हुआ था, मुहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाह ताला ने अपने करीब बुला लिया था और वो चीज़ें दिखा दी थी कि जो गैब की चीज़ें हैं जो इस दुनिया में उनका मुशाहदा नहीं हो सकता कि दोज़ख कैसी होगी, जन्नत कैसी होगी, किस तरह अजाब दिया जाएगा, दोज़खियों को अजाब दिखाया अल्लाह ताला ने, जन्नत की नेमतें भी दिखाई। तो इसका मोमिन की मेराज नमाज है कि उसके ज़रिए से मोमिन अपने दिल के रास्ते अल्लाह से करीब हो जाता है, दिल के रास्ते अल्लाह से करीब हो जाता है। हुज़ूर सल्लम को दिल और जिस्म दोनों के लिहाज से अल्लाह ने करीब बुला लिया था, ये नाम किया था, लेकिन अल्लाह ताला ने नमाज ऐसी चीज़ ऐसी इबादत अता फरमाई कि जिसमें इंसान अपने दिल के ज़रिए से अल्लाह से करीब हो जाता है, अल्लाह उससे करीब हो जाता है, अल्लाह ताला करीब है भी। तो इसलिए नमाज की बहुत ताकीद है, नमाज के बगैर अल्लाह से ताल्लुक कैसे मालूम होगा, तो अल्लाह के वफादार कैसे होगे, वफादारी का कोई इजहार कैसे तुमने किया, तो नमाज उसका बेहतरीन जरिया है और उसमें ऐसी हिकमत के साथ नमाज के अरकान रखे गए हैं जिसमें पूरी अब्दियत पूरी इताअत जाहिर हो जाती है। खड़ा होना, झुक जाना, सर डाल देना जमीन के ऊपर, बैठ जाना, ये सब वो कैफियात हैं जो इंसान के एहतियाज और इंसान की ज़रूरत की हालत में होती हैं। आदमी समझता है कि हम खताकार हैं, और अपने अफसर और अपने बड़े के सामने जो हाजिर होता है तो अदब से खड़ा होकर अपनी माजरत पेश करता है और माफी कहता है और अपनी तरफ से दिफा करता है खड़े होकर, और फिर उसकी तरफ से जब शफकत भी देखता है दिवाली की तरफ से तो वो अपने शुक्रिया के तौर पर झुक जाता है, सर झुकाता है कि आपके हम ममनून हैं कि आपने हम पर रहम किया। और ज्यादा जब कैफियत होती है आगे बिल्कुल गिर के सर डाल देता है। तो इंसान की जो नफ्सियाती कैफियत होती हैं जिसमें अब्दियत और इताअत का पूरा इजहार होता है उसकी जामे है नमाज। ऐसी हिकमत से अल्लाह ने उसको बनाया कि वो आदमी की इताअत और उसकी फरमाबरदारी और उसकी मोहब्बत अपने मालिक से मोहब्बत जो उसको है और अकीदत है उसका पूरा इजहार नमाज के जरिए होता है। तो मोमिन के लिए नमाज को सब अहमियत दी गई है लेकिन उसी से ताल्लुक उसका जाहिर होगा मोमिन का। और जैसे मैंने अर्ज किया कि जाहिर और बातिन का फर्क है, बड़ी अच्छी नमाज पढ़ रहे हैं जाहिर के एतबार से लेकिन बातिन के एतबार से अगर अच्छी नमाज नहीं है कैफियत अंदर नहीं है तो वो कैफियत ही के लिहाज से देखी जाएगी, जाहिर के लिहाज से नहीं कैफियत के लिहाज से देखी जाएगी अल्लाह ताला के यहाँ। लेकिन हम एक दूसरे का हुक्म नहीं लगा सकते, इसलिए कि एक दूसरे के दिल को हम नहीं झांक सकते। जब हम दूसरे के दिल को नहीं झांक सकते तो उसके दिल के मुताबिक हम कोई फैसला भी नहीं कर सकते। वो जाहिर जो करेगा उसी जाहिर पर हम फैसला करेंगे और बातिन का फैसला जो है वो अल्लाह के हाथ में, हमारे अख्तियार में नहीं है। तो वातु ज़का। और दूसरी चीज़ जिसकी अहमियत बहुत बताई गई है वो ज़कात है। ज़कात जो ज़कात का मतलब ये है कि गरीबों की मदद करना इंतहाई मुश्किल काम है, इंतहाई मुश्किल काम है। ये इंसान का इंसान की इताअत का बुरा इम्तिहान है ये गरीबों की मदद करना, और उस तरह मदद करना जिस तरह बताया गया है। लिया ज़कात, ज़कात और सदक़ात का ही फ़र्क है। ज़कात हमें उस तरीके से गरीबों की मदद करनी हुई जैसे हमको बताया गया है, उसमें हमारा इख्तियार नहीं है। और सदक़ात में इख्तियार है, कम दें ज़्यादा दें जैसा मौका हो वैसा करें, लेकिन ज़कात में उसका निसाब मुकर्रर है, उस निसाब के मुताबिक देना होगा, पाबंद है रामदार। तो आप देखेंगे कि जाहिर में तो मालूम होता है ज़कात खूब अदा होती है, ज़कात नहीं अदा होती। अक्सर आप देखेंगे ज़कात अदा नहीं होती और बहुत थोड़े लोग ज़कात अदा करते हैं, और ज़कात सही तौर पर अदा करना और मुश्किल है। 2.5% अपनी आमदनी का देना ये मुश्किल हो जाता है। भाई आदमी की आमदनी बहुत कम हो थोड़ी हो तो 2.5% देने में उसको ज़्यादा तकलीफ मालूम होगा, लेकिन इनकी अरबों और खरबों की दौलत है उनका कितना हिसाब बनेगा आप सोचिए। तो इसलिए वो काम बहुत मुश्किल है और उससे आदमी की इताअत अब्दियत का अंदाज़ा होता है, अल्लाह का कहना उसने कितना माना उसको, और अल्लाह ताला का अगर मोती है फरमानबरदार है तो अल्लाह के जो चीज़ अल्लाह को राज़ी करने वाली अल्लाह की खुशरूदी की है उसे वो खुशदिली के साथ करे। सिर्फ यही नहीं कि इताअत में करे बल्कि खुशदिली से करे कि हमारे मालिक इससे, हमारा मालिक इससे खुश होगा इसलिए हम करें। तो ये क्योंकि मुश्किल बहुत है इसलिए उसकी बार बार ताकीद आई है कुरान में, नमाज पढ़ो ज़कात दो, नमाज पढ़ो ज़कात दो, नमाज पढ़ो सदका करो, नमाज करो गरीबों की मदद करो, बहुत ताकीद लगेगा। इसलिए कि नमाज जो है वो अब्दियत की कमेयार है, इनके अब्दियत इंसान इंसान में अल्लाह की फरमाबरदारी अब्दियत अल्लाह से मोहब्बत कितनी है वो नमाज के जरिए से उसका अमल में आती है। और ज़कात क्योंकि मुश्किल इबादत है इसलिए, और उससे बहुत लोगों को फ़ायदा पहुंचता है, बहुत ही तकलीफें दूर होती हैं, इसलिए भी उसकी अहमियत ज़्यादा है। नमाज पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ आपको फ़ायदा पहुंचेगा, लेकिन ज़कात देंगे तो उससे कई को फ़ायदा पहुंचेगा, उसके मुताबिक लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। तो ज़कात के हिफाजियत में वसत है, उसमें دوسروں تک پھیلی ہوئی چیز ہے, اور نماز کی عبادت جو ہے وہ آپ تک ہے. آپ کتنی ترقی کر سکتے ہیں, کتنا تقرب اللہ تعالیٰ حاصل کر سکتے ہیں, وہ نماز ہے. اور یہ کہ اللہ کی ایسی اطاعت کہ جس سے بندگان خدا کو فائدہ پہنچتا ہے, ان کی تکلیفیں دور ہوتی ہوں, وہ زکات ہے. وہ اطیع الرسول اور رسول کی اطاعت کرو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام, اللہ تعالیٰ کے احکام ہمیں رسول کے ذریعے سے معلوم ہوتے ہیں, اور رسول نے جو کہا ہے وہ اللہ کا کہا ہوا ہے. تو اگر رسول کی اطاعت ہم نہیں کرتے تو اللہ کی اطاعت نہیں کرتے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اللہ کے تم ہوتی ہیں لیکن رسول کی بات نہیں مان رہے ہیں. مطلب کہ اللہ کی بات نہیں مان رہا ہے, باتیں بنا رہا ہے. بھائی جب کہہ دیا گیا کہ اللہ کا رسول وہی کہتا ہے جو ہم کہتے ہیں اپنے دل سے, وہ اپنی طرف سے وہ نہیں کہتا. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, کہ یہ اپنی طرف سے اپنی پسند سے نہیں کہتے, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو وہی کے ذریعے سے بتاتے ہیں. تو اللہ کے رسول کی بات اللہ کی بات ہے, تو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا جبھی تو اللہ کی اطاعت ہوگی. اللہ کے رسول سے ہٹ کے کیسے اطاعت کر لے گا, اللہ تک وہ کیسے پہنچ جائے گا بغیر رسول کے. تو اور اطاعت کرو رسول کی, لعلکم ترحمون, ایسا کرو گے تو اس کی بہت توقع ہے کہ اللہ تم پر اللہ کا رحم ہو. اللہ کے رحم تو مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے. اللہ کے رحم میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں, آدمی کی عافیت ہے, سلامتی ہے, اس کی ترقی ہے, اور اس کے لیے خیر کی صورتیں ہیں, ساری سب اللہ کے رحم میں آ جاتی ہیں. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض وماواهم النار ولبئس المصير. یہ تو ایمان والوں کی بات ہوئی, اور جو لوگ جنہوں نے انکار کیا, جنہوں نے بات نہیں مانی, تو وہ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے, یعنی ان کا اختیار بہت محدود ہے. وہ اللہ نے ان کو جو اختیار دیا ہے, اللہ کے لیے وہ اختیار ہے انسان کو, ہاتھ کا چلنا, پیر کا چلنا, جو اللہ نے ہاتھ میں چلنے کی صلاحیت دی تو ہاتھ چلتا ہے, پیروں میں صلاحیت دی, اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی عضو کی صلاحیت واپس لے لے کیا؟ ہاتھ بیکار ہو گیا, چل ہو گیا, فارغ ہو گیا, ساری ہیٹی نکل گئی, سارا غرور ختم ہو گیا, بہت شان دکھا رہا ہے. اللہ نے اس کا ایک, اس کی ایک طاقت لے لی واپس, بس پھر بیکار ہے, پڑا ہے. تو یہ ہے کہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے, اللہ کو ہرا نہیں سکتے, وہ کیا کر لیں گے اللہ تعالیٰ کا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرے گا اس کو سمجھ لو. تو جو لوگ فرمایا لا تحسبن الذين كفروا, ان کو نہ سمجھو یہ کہ جو جنہوں نے کفر کیا ان کو نہ سمجھو کہ وہ اللہ کو زمین پر عاجز کر دیں گے, اللہ کے نظام کو وہ روک دیں گے. وہ بابا منار, اور ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے, آگ ہے, دیر سوے وہاں جانا ہے ان کو. وہ لبیس المصیر, اور ظاہر ہے کہ بہت بدبختی کا یہ انجام ہے, یہ انجام بہت بدبختی کا ہے. بیس المصیر بہت بختی کا انجام ہے کہ چند سال رہے دنیا میں غرور کے ساتھ, لیکن آخرت میں جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں جہنم میں رہے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.